में काफी अरसे से जंगें चल रही थी, औस था और खजरज था, तो उनके दरमियान लड़ाई रहती थी। फिर अंसार जो सारे मदीना के लोग थे, उनके साथ जो महाजरीन जो आए मक्का वाले आए, तो मक्का और मदीना मुनव्वरा वाले लोगों की तबीयतें भी आपस में मुख्तलिफ थी। तो आपस में मिल जाना, इत्तफाक हो जाना, इत्तहाद मोहब्बत हो जाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात बताई कि आप पूरी दुनिया का माल भी खर्च कर देते, इनके दिल मिल नहीं सकते थे, और जब दिल नहीं मिलते तो कामयाबी नहीं होनी थी। तो ये जो दिल मिल गए, अल्लाह फरमा रहे हैं, ये अल्लाह ने उनके दिल में दिलों में मोहब्बत डाल दी। मगर इस हवाले से हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और भी बड़ा खूबसूरत पॉइंट बयान फरमाया, और वो ये कि पूरी दुनिया में हर जगह इस चीज को पसंद किया जाता है कि लोग इत्तेहाद से रहे। हर कौम, हर मुल्क यही कहता है कि जी हमारे लोगों में इत्तेहाद होना जरूरी है, और बहुत सारे उसके इत्तेहाद करने के तरीके बयान किए जाते हैं। मगर हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों का जो इत्तेफाक है वो अल्लाह की इताअत पर मौकूफ है, कि जितना अल्लाह की बात को माना जाएगा, जितना अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया जाएगा, उतना आपस में मिलेंगे, और जितना अल्लाह की नाफरमानी की जाएगी उतने ही दिल जो है वो दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका ना होने दो। तो जब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे, यानी कि अल्लाह के जो हुक्म है उनको मजबूती से पकड़ लिया, तो फिर आपस में तफरका नहीं होगा, आपस में इख्तिलाफ नहीं होगा। और जब अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया जाएगा, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिया जाएगा, हर तरह की अल्लाह की नाफरमानी हो रही होगी, तो चाहे नाम के हम मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे हम यही क्यों ना कहें कि जी इस्लाम के नाम पे ये हमारा मुल्क हासिल किया हुआ है, मगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही होगी तो आपस में एक होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज इस उम्मत का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम एक नहीं है। तो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने लगेंगे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपस में मोहब्बतें डाल देंगे। मगर इसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने जाहिरी तदबीर भी बताई कि सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना ये भी जरूरी, मगर साथ साथ एक दूसरे के लिए दिल में रंजिश ना रखना, एक दूसरे को माफ कर देना, गलती पता चल जाए तो भी माफ कर देना, ये भी आपस में मोहब्बतों का एक जरिया है। तो दूसरों को माफ कर देना ये एक कुरानी हुक्म बन गया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब से फरमाया, खुज़िल अफ़्वा, कि तुम माफ करने को पकड़ लो। अब ये हुक्म कुरान का ये नहीं है कि तुम माफ कर दिया करो, बल्कि ये फरमाया तुम माफ करने को पकड़ लो। इसका मतलब है अब जिंदगी भर यही काम करते रहना पड़ेगा। और जो शख्स ये कहे कि नहीं जी ये क्या बात हुई कि कोई गलती करे और मैं माफ कर दूं, मैंने तो किसी की गलती को बिल्कुल भी माफ नहीं करना, गलती करने वाले का तो हक यही बनता है कि उसको सजा दी जाए, तो फिर जिंदगी में किसी के साथ भी नहीं रह सकता ऐसा शख्स, क्योंकि हर शख्स के अंदर गलती है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, कुल्लू बनी आदम खता, जिसको भी करीब से देखेंगे गलती नजर आ जाएगी, हम में से कोई भी गलती से पाक नहीं है। तो अगर हम ये कहेंगे जी गलती पे मैंने सजा ही देनी है, तो फिर तो हर एक को ही सजा देनी पड़ेगी आपको, तो फिर आप किसके साथ रहेंगे। तो इसलिए माफ करना जो है ये कुरानी हुक्म है, और ये आपस में मोहब्बतें पैदा करने का बेहतरीन जरिया है। मगर ये आपस में मोहब्बतें पैदा करने का बेहतरीन जरिया भी है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना का जरिया भी है। ये अल्लाह का कुरानी हुक्म आ गया है कि जिसे माफ नहीं करना, माफी को पकड़ लेना है। मगर इसके चार फायदे और भी मशाइख ने बयान किए हैं। एक दूसरे को माफ कर देना, इसके चार फायदे और भी मशाइख ने बयान फरमाए हैं। तो माफ करना जो है ये एक अच्छी सिफत है। इस माफ करने से आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं, और आपस में मोहब्बतें जब बढ़ती हैं तो फिर कामयाबी कौमी हैसियत से बहुत आसान हो जाती है। नबी अलैहि सल्लत व सलाम के सहाबा में आपस में मोहब्बत थी, तो इसलिए कामयाबी बहुत ही आसान होगी। मगर इसके साथ साथ अगर आपस में मोहब्बत रखेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि कामयाबी मिलेगी, बल्कि चार फायदे और भी मिलेंगे। और सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा ये कि जो शख्स दूसरों को माफ करने की तबीयत रखेगा उसे अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। इससे बढ़ के और क्या चीज है? अल्लाह की मोहब्बत कोई आसान चीज नहीं है। किताबों में को पढ़ के देखें अल्लाह वालों ने कितनी रियाजतें मेहनतें की। मगर जो शख्स दूसरों को माफ करता है उसको भी अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाती है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैस, जो गुस्से को पी जाते हैं, व आफीन अनिन नास, जो लोगों को माफ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो देखे जो दूसरे को माफ करने वाला है अल्लाह की मोहब्बत का हकदार बन गया। अब बड़े बड़े मुजाहिदे करने की जरूरत नहीं है, बस माफ करने की तबीयत रखे तो अल्लाह की मोहब्बत के हकदार बन जाएंगे। और वैसे भी बड़ों का काम माफ करना होता है, बड़ों का काम शफकत करना है। इंसान अपनी उम्र की वजह से बड़ा नहीं होता, शफकत की वजह से बड़ा होता है। एन मुमकिन है कि 17-18 साल का बच्चा जो है वो शफकत खूब हर एक पे करता है तो लोग उसको बड़ा ही समझेंगे कि ये बड़ा है, ये बड़े भी इससे मशवरा करेंगे। और कई मरतबा 70 साल का बूढ़ा होता है मगर हर एक से झगड़े कर रहा होता है तो लोग उसको बच्चा ही समझते हैं कि जी इससे दूर ही रहो। तो माफ करना जो है उससे इंसान को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, ये सबसे बड़ा फायदा। बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत दोनों चीजें मिलती है। जब माफ करते हैं, दूसरों पर रहमत करते हैं, दूसरों पर मेहरबान होते हैं, फिर इंसान अल्लाह की मेहरबानी का भी मुस्तहिक बन जाता है। हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम किया करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। इसलिए बड़ी फायदे की चीज है अगर इंसान दूसरों को माफ कर दे। तो पहला बड़ा फायदा, जो शख्स दूसरों को माफ करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का हकदार बन जाता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम को खूब एक दूसरे को माफ करने पे बरंगेख्ता करते, तरगीब देते। मगर दूसरा बड़ा फायदा इसका यह है कि ये माफ करना ये सुन्नत का मिजाज है। तो शरीयत के अंदर बहुत सारी सजाएं हैं मगर मिजाज जो है ना वो माफ करना ही है। सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरा गुलाम है और ये इतना खराब है, चोरियां भी कर लेता है, मेरा हुक्म भी सही तरह से पूरा नहीं करता, मैं इसको बुलाता हूं तो आता भी नहीं है कई मरतबा, तो मैं इसको माफ भी करता हूं मगर अब कितनी मरतबा माफ करूं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हर रोज इसको 70 मरतबा माफ कर दिया करो। अल्लाह हू अकबर। ये मिजाज, मिजाज नबूवत जो है ये माफ करना ही। तो जो शख्स ये कहेगा कि नहीं मैंने तो किसी की गलती को माफ करना ही नहीं है, बल्कि कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो गलती होती भी नहीं है, नजर भी नहीं आ रही होती है, मगर जानबूझ के कुरेद रहे होते हैं कि कहीं से मुझे गलती मिले ताकि मैं एक लड़ाई हंगामा शुरू करूं। तो ऐसा बंदा जो है वो अल्लाह की रहमत से बहुत दूर, अल्लाह के नबी से भी बहुत दूर। तो एक दूसरे को माफ करेंगे तो मिन हैसुल कौम, एक कौम की हैसियत से कामयाब हो जाएंगे, मगर इसके साथ साथ चार फायदे और भी मिलेंगे। कि पहला ये कि इंसान को अल्लाह की मोहब्बत का हकदार बन जाता, माफ करने वाला शख्स, लोग कहेंगे जी भोला है, इसने अपने हक की बात नहीं की, लड़ाई करनी चाहिए थी जनाब, क्यों लड़ाई नहीं की, लोग तो उसी पर उकसाएंगे। मगर जिसने माफी को पकड़ लिया, उसने बड़ा जबरदस्त फैसला किया, बहुत जबरदस्त डील कर लिया कि सस्ते में, और उसने बहुत ही सस्ती कीमत में अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर लिया। मगर साथ साथ सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत को भी हासिल कर लिया। अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत उसी के लिए है जो अल्लाह के प्यारे महबूब की सुन्नतों पर अमल करेगा, और सुन्नत अल्लाह के प्यारे महबूब की माफ करना ही है। जानी दुश्मनों को माफ कर दिया तो अब और पीछे क्या रह गया। और तीसरा बड़ा फायदा माफ करने का यह है कि जो शख्स दूसरों को माफ करता है वो जहनी सुकून और जहनी सेहत का भी हकदार हो जाता है। ये जब इंसान दूसरों की नफरत को दिल के अंदर लेके बैठा होता है ना, दूसरे ने फलां चीज फलां बात क्यों कही, ये बातें लेके दिल में बैठा होता है, तो ऐसा शख्स जो है वो जहनी कोफ्त में रहता है। और जब इंसान माफ कर देता है तो उसका जहन जो है वो इन जहनी अजियतों से बाहर निकल जाता है। अमेरिकी एक साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम एवरेट वर्थिंगटन, उन्होंने इस पर तहकीक की जी क्या माफ करने का वाकई कोई फायदा, दुनियावी फायदा है नहीं है, यानी क्योंकि काफिर हैं तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो गई, अल्लाह के नबी की मोहब्बत हासिल हो गई, ये इनको समझ में इतना नहीं आता। वो ये देखना चाह रही थी या देखना चाह रहे थे, जो भी उनका नाम है, जो बड़े साइकोलॉजिस्ट बड़े मशहूर, कि जी इस माफ करने से कोई दुनियावी फायदा होता है या नहीं होता, माफ करने वाले लोग बेहतर रहे या माफ नहीं करने वाले, गलतियों को पकड़ने वाले बेहतरी यानी फायदे में हैं या माफ करने वाले फायदे में हैं। तो उसने तहकीक करके ये कहा कि जी मैंने तहकीक की उन लोगों के ऊपर, गालिबन उसने कहा कि 7,000 लोगों पे तहकीक की जो डिप्रेशन से बाहर निकल आए, और ये बातें पता करने की कोशिश की कि उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी कि डिप्रेशन से बाहर निकल आए। आम डॉक्टरों का कहना यह है कि डिप्रेशन से बाहर पूरी तरह से इंसान निकलता ही नहीं है, एक मरतबा फंस गया तो फंस गया। डिप्रेशन कहते हैं कि इंसान जहनी तौर पे इतनी अजियत में आ जाए कि हाथ पैर काम करना ही छोड़ दें, इसको डिप्रेशन का कंडीशन कहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं इसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आती है, मगर पूरी तरह से इंसान सही नहीं होता। मगर ऐसा भी नहीं है लोग निकल आए हैं डिप्रेशन से। तो उसने तहकीक ऐसे लोगों पे की जो डिप्रेशन से निकल आए थे, और वो चीजें ढूंढने की कोशिश की कि क्या ऐसी चीजें उनके अंदर थी कि वो निकल आए। उसने कहा मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ चीजें थी, मगर एक चीज सब में कॉमन थी, और वो ये थी कि उनके अंदर माफ करने का जज्बा था। तो जब उन्होंने सबको माफ कर दिया, दिल में से रंजिश को निकाल ही दिया, तो डिप्रेशन में से भी निकल आए। तो माफ करने से आपस में कौम एक तो हो ही जाती है, मगर चार और भी फायदे हैं। एक ये कि जो माफ करने वाले हैं वो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत का हकदार, दूसरा वो कि जो माफ करने वाला है वो सुन्नत के करीब है, अल्लाह के प्यारे महबूब के करीब है, और तीसरा ये कि जो माफ करने वाला है वो जहनी सुकून में भी है। जो दूसरों को माफ नहीं करता वो फिर जहनी सुकून में नहीं रहता है, जहन उसका बस एक बेसुकूनी और अजियत में रहता है तो कितनी जबरदस्त चीज है। इस जहनी सुकून के लिए लोग हजारों लाखों डॉलर खर्च कर देते हैं, तो क्या ही अच्छा है कि इंसान माफ करने वाली तबीयत बना दे तो जहनी सुकून ही सुकून। और अल्लाह वालों की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यही है कि वो दूसरों को माफ कर देते हैं। इसलिए हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुगल बादशाहों से कहा कि ए मुगल बादशाहों, अगर तुम्हें पता चल जाए हमारे दिलों में कितना सुकून है तो तुम अपनी फौजें लेकर हम पर ही चढ़ाई कर दो। और चौथी चीज जो माफ करने से इंसान को नसीब होती है वो है कि जो माफ करने वाला शख्स होता है वो दुनिया की इज्जतों, दुनिया और आखिरत की इज्जतों का भी हकदार होता है। हदीस पाक के अल्फाज, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूं कि जिस पर जुल्म हुआ और उसने जुल्म का बदला नहीं लिया बल्कि माफ कर दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कसम खा के कहता हूं अल्लाह उसकी इज्जतों में इजाफा फरमाएंगे। और आप इसको ट्राई करके देख लें, जब जब माफ करेंगे दूसरों को बिला जवाज माफ करेंगे कि ठीक है जी माफी का हकदार तो नहीं मगर मैंने फिर भी माफ कर दी, तो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला कैसे इज्जतें देते हैं। ऐसे ऐसे जगहों से अल्लाह इज्जतों के नक्शे बनाते हैं कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। सुभान अल्लाह। माफ करने के हवाले से, दिल के अंदर रंजिशों को दूर करने के हवाले से एक हदीस बहुत मशहूर है कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे और दूर से एक आदमी गुजरा, आपने बैठे में जो सहाबा जो करीब थे उनको फरमाया कि वो देख रहे हो, उसको देख रहे हो, वो जन्नती है। अब वो जो सहाबी जिनकी तरफ आपने निशानदेही फरमाई वो इतने मशहूर भी नहीं थे, इतने जाने माने भी नहीं थे, एक आम से सहाबी थे, अननोन, मगर जो आपके करीब बैठे हुए थे उनमें से एक साहबी को बड़ी हैरानगी हुई और बड़ी फिक्र हुई कि ये करते क्या है कि अल्लाह के नबी की मुबारक जुबान से उनके लिए जन्नत की बशारत निकल आई। तो वो पीछे उनके घर पे चले गए और जाकर उनसे कहा कि मैं आपके घर में मेहमान हूं। तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आइए घर में। उनके घर में 3 दिन मेहमान के तौर पे रहे ये देखने के लिए कि कौन सा अमल ये करते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इनको जन्नती फरमाया। 3 दिन बाद उन्होंने देखा कि जी ये तो सारे वही अमल कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो 3 दिन बाद सच्ची बात कर ही दी कि जी आपके पास इसलिए नहीं आया कि मुझे कोई मेहमान बनने की जरूरत थी, इसलिए आया हूँ कि ये देखना चाह रहा था कि अल्लाह के नबी ने आपके बारे में फरमाया कि आप जन्नती हैं तो कौन सा अमल आप ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा जी भाई मैं तो कमजोर हूं, मैं तो आप जितना भी अमल नहीं करता, मैं तो लोगों से कम अमल करता हूँ। मगर उन्होंने फिर इंसिस्ट किया कि नहीं अल्लाह के नबी की मुबारक जुबान से निकला है तो आप खुद ही बता दें वो कौन सा अमल है। फिर उन्होंने बताया कि हाँ एक चीज जरूर करता हूँ, हर रात सोने से पहले अल्लाह को ये कह के सोता हूं कि ऐ मेरे मालिक जिस किसी ने भी मेरे साथ जो बुराई जो गलती की है मैं सबको माफ करता हूँ, ऐ अल्लाह तू मेरे गलतियों को भी माफ कर दे। तो ये माफ करने वाला अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आके जिसका दिल साफ है दूसरों से जन्नत ले गया, तो ये छोटी डील नहीं है, बेहतरीन डील है दूसरों को माफ करना। यही वो चीज है जो कौम को एक बनाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बेहतरीन सिफत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह आलमीन। एक मरतबा फिर ये आज तर्जुमा कर देता है, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लफ बैन कुलूबिहिम, और उल्फत डाल दी उनको दिलों में, वलो अनफक्त मा फिल अर्द जमीअन मा अल्लफ्ता बैन कुलूबिहिम, और अगर आप खर्च कर देते जो कुछ जमीन में है सारा का सारा ना उल्फत डाल सकते उनके दिलों में, वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने उल्फत डाल दी उनके दरमियान, इन्नहु अजीजुल हकीम, और बेशक वो जोर आवर है हिकमत वाला है। यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है। तालिबात थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर ले, आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर ले, आंखों को बंद कर ले, सर को झुका। देखने वालों ने ये रंग निराला देखा, देखने वालों ने ये रंग निराला देखा, देखने वालों ने ये रंग निराला देखा, हर तरफ इसमें मुहम्मद का उजाला देखा, हर तरफ इसमें मुहम्मद का उजाला देखा, उनकी नजदों में बराबर थे अमीर और फकीर, उनकी नजरों में बराबर थे अमीर और फकीर, उनका आशिक कोई गोरा कोई काला देखा, उनका आशिक कोई गोरा कोई काला देखा, देखने वालों ने ये रंग निराला देखा, हर तरफ इसमें मुहम्मद का उजाला देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदि व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदि मबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.